31 मार्च रोहिणी सेक्टर 7 दिल्ली जैन स्थानक पुण्य का पेट्रोल पंप संघ शास्ता श्री सुदर्शन लाल जी महाराज सा की जन्म शताब्दी पर 5-5 सामायिक का आयोजन प्रवचनकार जनाचार्य श्री ज्ञानचंद्र जी महाराज सा रोहिणी सेक्टर 7 के जैन स्थानक में प्रवचन देते हुए फरमाया कि खुदा पर हमेशा भरोसा रखो। खुदा वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, खुदा वह देता है जो आपके लिए अच्छा है। आप परमात्मा की भक्ति करके अपनी इच्छा रखते हैं, लेकिन आपकी इच्छा के साथ कोई साइड इफेक्ट होने वाला हो तो वो आपको क्या मालूम रहेगा। आप ऑडी कार मान रहे हो, आपको यह मालूम नहीं कि उसी ऑडी कार से आपके बेटे का एक्सीडेंट होने वाला है। इसलिए कहते हैं कि खुदा वो नहीं देता है जो आपको अच्छा लगता है, खुदा वो देता है जो आपके लिए अच्छा हो, यानी कि किसी तरह का साइड इफेक्ट न हो। हम परमात्मा का शुद्ध भाव से स्मरण करें ताकि वो मिले जो हमारे लिए अच्छा हो। उस परमात्मा का स्मरण करने के लिए चार शरण है। अरिहंते शरण पवज्जामि, सिद्धे शरण पवज्जामि, साहु शरण पवज्जामि, केवली पनत्तम धम्म शरण पवज्जामि। इन चार शरणों में सब महात्मा और परमात्मा आ गए। जैन दृष्टि से 2000 करोड़ से 9000 करोड़ साधु है। साहु शरण पवज्जामि बोलने से सबकी शरण ले ली जाती है। विश्व में फैली उन सबकी शुद्ध तरंगे हमें पावन करती चली जाती है। इसी तरह 2 करोड़ से 9 करोड़ केवली अरिहंत है। अरिहंते शरण पवज्जामि बोलने के साथ ही उन सबका शरणा मिल जाता है। केवली प्ररूपित धर्म की शरण यानी कि वितरागियों द्वारा मिले धर्म की शरण स्वीकार करने से धर्म की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार चार शरण में संसार के सभी श्रेष्ठ महापुरुषों की शरण प्राप्त हो जाती है। जिस प्रकार एक बटन ऑन करने से हजारों बल्ब जल जाते हैं, वैसे ही भक्ति पूर्वक चारों शरणों को शास्त्रीय भाषा में बोलने से एक अपरिमेय शक्ति प्राप्त होती है। इन चार शरणों को ग्रहण करोगे तो असंख्य देवी देवता भी आपके साथ जुड़ जाएंगे। चमरेंद्र का भगवती सूत्र में विस्तृत वर्णन आता है। विंध्याचल की तलहटी में पूरन नामक एक समृद्ध गृहस्थ रहता था। एक बार उसके मन में एक संकल्प उठा कि मैं यहाँ जो सुख भोग कर रहा हूँ वह सब पूर्वजन्मकृत पुण्य का फल है। इस जन्म में यदि कुछ ऐसा विशिष्ट तपश्चरण आदि न करूँगा तो अगले जन्म में सुख प्राप्त कैसे होगा, अतः कुछ तप आदि करना चाहिए। इस संकल्प के अनुसार मन में भावी जीवन के पुण्यफल को कामना का संस्कार लिए वह घर बार छोड़कर सन्यासी बन गया और दानामा दान प्रधान प्रव्रज्ञा अंगीकार कर ली। उसकी विधि के अनुसार वह 2 दिन का उपवास करके पारने के लिए निकलता तो हाथ में एक लकड़ी का 4 खानों वाला पात्र रखता। पात्र के पहले खाने में जो भिक्षा प्राप्त होती वह भिखारियों को दे देता, दूसरे खाने में प्राप्त भिक्षा कौओं कुत्तों आदि को खिला देता, तीसरे खाने में प्राप्त भिक्षा मछलियों कछुए आदि जलचर प्राणियों को डाल देता और चौथे में जो कुछ बचता वह स्वयं खाकर पारणा करता। इस प्रकार का घोर तप 12 वर्ष तक करता रहा। अंत में 1 महीने का अनशन कर आयुष्य पूर्ण कर वह असुर कुमारों का इंद्र चमरेंद्र बना। उसने अपने ज्ञान बल से इधर उधर देखा, संसार में मुझसे भी कोई अधिक बलशाली और ऋद्धिशाली है क्या। तभी ठीक उसे देव विमानों के ऊपर सौधर्म विमान में इंद्रासन लगा दिखाई दिया। सौधर्मेंद्र अपने भोग विलास आमोद प्रमोद व ऐश्वर्य में मस्त था। अपने सिर पर इस प्रकार सौधर्मेंद्र को आनंद विलास करते हुए देखकर चमरेंद्र का अहंकार क्रोध के रूप में भड़क उठा। उसने अन्य असुर कुमारों से पूछा, यह कौन पुण्यहीन विवेकहीन अहंकारी देव है जो यूं हमारे मस्तक पर निर्लज्जतापूर्वक बैठा देवियों के साथ हास विलास कर रहा है। क्यों न इसके अहंकार को चूर चूर कर दिया जाए। अन्य असुर कुमारों ने उसे समझाया, यह सौधर्मेंद्र है और अपने विमान में बैठा है, हमसे अधिक शक्तिशाली है, अतः इससे कुछ छेड़छाड़ करना अपनी जान से खेलना होगा। अहंकार में लिप्त चमरेंद्र ने अट्टहास के साथ अन्य असुर कुमारों का उपहास किया, तुम सब काया हो, मैं किसी को यूं ही अपने सिर पर बैठा नहीं देख सकता, अभी मैं उसकी टांग पकड़कर आसन से क्या स्वर्ग से भी नीचे फेंक देता हूँ। अहंकार ईर्ष्या और क्रोध के आवेग में अंधा बना हुआ असुरेंद्र एक भयंकर हुंकार के साथ उठा सौधर्मेंद्र पर प्रहार करने। तभी सहसा मन के सघन अंधकार के एक कोने में हल्की सी ज्योति जली, उसे अपनी दुर्बलता और तुच्छ सामर्थ्य का अनुभव हुआ। कहीं मैं पराजित हो गया तो जान भी नहीं बच पाएगी। तभी एक रात्रि की महाप्रतिमा सुनसुमारपुर नगर के बाहर वृक्ष के नीचे ग्रहण करके ध्यानयोग में स्थिर श्रमण भगवान महावीर का स्मरण हुआ। बस यही एक श्रमण तपोमूर्ति ऐसा सामर्थ्यशाली है जो मुझे शरणभूत हो सकता है। ध्यानलीन श्रमण भगवान महावीर के चरणों में असुरेंद्र आया। महावीर तो ध्यान में अंतलीन थे। उसने विनयपूर्वक प्रदक्षिणा की और बोला, प्रभो, आज मैं उस अहंकारी सौधर्मेंद्र से लोहा लेने जा रहा हूँ। मेरी जीवन रक्षा आपके हाथ में है, आप ही मेरे अनन्य शरण हैं। उद्धरण चिन्ह। महावीर को वंदना कर असुरराज ने विकराल रूप बनाया और रौद्र हुकार करता हुआ स्वर्ग में पहुंचकर देवराज इंद्र को ललकारने लगा। उसका भयानक रौद्र रूप देखकर हास विलास में मग्न देवगण डर गए। देवियों की कांति मंद पड़ गई, स्वर्ग में खलबली मच गई। अचानक असुरराज के आक्रमण का संवाद बिजली की भांति सर्वत्र फैल गया। अनंतकाल में ऐसा कभी नहीं हुआ, महाश्चर्य। तभी देवराज इंद्र ने असुरेंद्र को ललकारा, दुष्ट, यह धृष्टता तेरी, दूसरे के भवन में आकर यूं उत्पात मचाना और क्रोध में आकर अपना दिव्य वज्र असुरेंद्र पर फेंका। हजार हजार बिजलियों की तरह चमकता कौंधता वज्र देखकर असुरेंद्र घबराया जान मुट्ठी में लेकर उल्टे पैरों भागा। वज्र उसका पीछा कर रहा था। तीक्ष्ण अग्नि ज्वालाओं की तरह उसकी किरणें असुरराज को भस्म करने को दौड़ रही थी। तीव्र वेग से दौड़ता भागता घबराया हुआ असुरराज सीधा पहुंचा ध्यानलीन श्रमण महावीर के चरणों में। भय से कांपता हुआ वह पुकार रहा था, भयवा शरण प्रभो, आप मेरे शरणदाता हैं, बचाइए, रक्षा कीजिए। और वह छोछीटी का रूप बनाकर महावीर के चरणों में छुपकर दुबक कर बैठ गया। देवराज ने क्रोधाविष्ट होकर असुरराज पर प्रहार करने के लिए वज्र फेंक तो दिया, किंतु तुरंत ही उन्हें स्मरण आया, दुष्ट असुरराज को मेरे देव विमान पर अचानक आक्रमण करने का साहस कैसे हुआ। किसी भावितात्मा महापुरुष का आश्रय या शरण लिए बिना वह यहाँ तक कैसे आ पहुँचा। और तत्क्षण ही उन्हें ध्यान आया, अरे, यह तो तपोलीन श्रमण महावीर के चरणों का आश्रय लेकर आया है। देवराज का हृदय अनिष्ट की आशंका से व्याकुल हो गया, कहीं मेरे वज्र प्रहार से प्रभु महावीर का अनिष्ट न हो जाए। दिव्य देवगति से देवेंद्र अपने वज्र के पीछे दौड़े। आगे आगे असुरराज, पीछे अग्निज्वालाएं फेंकता हुआ और उसके पीछे वज्र को पकड़ने में उतावले देवराज। असुरराज तो महावीर के चरणों में जा छुपा, वज्र सिर्फ चार अंगुल दूर था। तभी देवराज ने उसे पकड़ लिया और वे प्रभु महावीर से अविनय के लिए क्षमा मांगने लगे। अभयमूर्ति महावीर के समक्ष दो महान शक्तिशाली परंतु परस्पर विंतभाव से बैठे हैं। एक विजेता है, फिर भी प्रभु के समक्ष विनम्र, एक पराजित है, अपराधी और मृत्यु के मुंह में जाते जाते बचा है, पर वह भी वहां भयमुक्त है। यही तो उनकी अहिंसा का दिव्य प्रभाव है। देवराज ने पैरों के नीचे छुपे असुरराज को पुकार कर कहा, असुरेंद्र, तुमने क्षमाश्रमण महावीर की शरण ग्रहण कर ली, इसलिए आज बच गए। चलो, अब महाश्रमण के शरणागत को मैं भी अभयदान देता हूँ। प्रभु की असीम करुणा और दिव्य शरण ने असुरराज को भयमुक्त कर दिया। वो दृश्य कितना भावपूर्ण होगा जब एक ओर विजेता देवेंद्र प्रभु को वंदना करता होगा और दूसरी ओर अपराध की आग से दग्ध असुरराज भी जीवनदान प्राप्त कर प्रभु के चरणों में लौटने लगा होगा। दोनों के लिए ही प्रभु के मुख कमल पर अभय और करुणा, प्रेम और सद्भाव की रेखाएं उभर रही होंगी। इस उदाहरण से यह स्पष्ट है कि चमरेंद्र द्वारा केवल भगवान की शरण ली गई थी। भगवान तो ध्यान में थे, वो केवल बोलकर चला गया तो भी वो बच गया। तो हम भी प्रतिदिन स्थानक में या अपने घर में ही ईशान कोण में मुंह करके कम से कम 11 बार हाथ जोड़कर चार शरण को बोले। फिर जब तब कभी भी एक बार इन चार शरण को बोल सकते हैं। ये चारों शरण हमें विशिष्ट शक्ति प्रदान करते हैं। सारे महाराज जो मंगलिक सुनाते हैं उसमें यह चार लाइनें ही महत्वपूर्ण हैं। जिस प्रकार खिलौने में चाबी भरने से वह चलने लगता है, वैसे ही इन चार शरणों को बोलने मात्र से हमारे सद्भाग्य की चाबी भरी जाती है। यद्यपि चमरेंद्र गलत काम करने जा रहा था, फिर भी भगवान की शरण लेकर जाने के कारण बच गया। प्रभु शरीर से हमारे सामने हो या न हो, पर उनकी शरण हमें अवश्य बचा लेती है। शुद्ध मन से प्रभु की शरण को स्वीकार करिए। कई बार आपका कोई परिचित दोस्त आपको अगर गिफ्ट में कोई छोटी सी मूर्ति दे दें, अब आप क्या करोगे? तो न फेंक सकते, न किसी को देने की इच्छा होगी। आप घर पर रखोगे, जब तब हाथ जोड़ते रहोगे। धीरे धीरे बरसों बाद आपके पपोते उसी मूर्ति को देखकर सोचेंगे कि हमारे पूर्वज मूर्ति को मानते थे, तो वे मूर्ति को बड़ा बनाकर मंदिर के उपासक बन जाएंगे, जबकि हम निराकार के उपासक हैं। अतः यह सोचनीय बात है। इसलिए आपको चांदी की कटोरी में नमोत्थुना प्रिंट करके श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंत के लोग देने लगे हैं। यह प्रलोभन नहीं, बल्कि स्थानकवासी धर्म को सन्मार्ग पर लाने का एक प्रयास है, ताकि जब भी काम पड़े तो आप उस कटोरी में प्रासुक पानी डालकर उस पर हाथ रखकर नमोत्थुना का पाठ करके उसे ग्रहण कर सकते हैं, तो अरुज आरोग्यता प्राप्त होने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन लोगों ने इस कटोरी को प्रलोभन बताकर नमोत्थुना जैसे पवित्र पाठ को भी खराब करने में असफल प्रयास किया है। जिस घर में भी कटोरी जाएगी, उस घर में समस्या के समाधान की एक वैज्ञानिक आगम सम्मत प्रक्रिया चलेगी। अब इस उपक्रम को भी और भी अधिक परिष्कृत रूप दिया जा रहा है। आप जो भी बात सुने, मन मन में गुनगुन न करके मुंह से पूछ ले, ताकि आपको यथार्थ समाधान मिल सके। महावीर जयंती सामने है, आप सभी से यह आह्वान है कि आप महावीर स्वामी का जीवन, तीर्थंकर महावीर जो सबके पास पहुंच रहा है, उसको एक बार पूरा अवश्य पढ़ें। हम जिसे भगवान मानते हैं, उनका जीवन हर वर्ष एक बार पूरा पढ़ने से वो हमारे प्राणों में बसने लगेंगे। पुस्तक को दान में लेने की बजाय खरीदना पाठकों के लिए ज्यादा सार्थक है। गुरुदेव सुदर्शन शताब्दी 5-5 सामायिक साधना 9 अप्रैल तक परम पूज्य शासन गौरव महाप्रभावी जन जन के वात्सल्य वारिधि संघशास्ता श्री सुदर्शन लाल जी महाराज साहब की जन्म शताब्दी चलनी है। इसमें रक्तदान शिविर में तो डॉक्टर आपके रक्त की टेस्टिंग करके जमेगा तो लेंगे, अन्यथा नहीं लेंगे। इसलिए मेरा आपसे कहना है कि 9 तारीख तक किसी भी एक दिन उनकी स्मृति में आंशिक कृतज्ञता प्रकट करने के लिए एक साथ 5 सामायिक अवश्य करें। बोलो भाइयों, करोगे या नहीं? सभी ने स्वीकृति दे दी और सभी को नियम करा दिया गया। 5 सामायिक एक साथ करने से एक उपवास का भी लाभ होता है। गुरु दक्षिणा के रूप में कुछ न कुछ हर रोज अच्छा सा नियम करते रहे, इससे उन गुरु भगवंतों को नहीं आपको ही विशेष लाभ होगा। यह तन यही रहेगा, यह धन यही रहेगा, इनसे कुछ अच्छा कर लोगे तो वो साथ चलेगा। आप संघ को दान देते हैं तो संघ पर आसान नहीं करते, बल्कि संघ आपके धन का सदुपयोग कर मेहनत करके बल्कि आप पर आसान करता है। हमारे नररत्न जी जैन एवं उनकी धर्मपत्नी अरिहंतंगा दिल्लीवासी बहुत ऊंचे पोस्ट से निवृत्त होकर धर्म ध्यान स्वाध्याय में लगकर अपनी वृद्धावस्था का सच्चा आनंद ले रहे हैं। लोग सोचते हैं कि मृत्यु के समय सारा परिवार सामने हो, जो नहीं है उसे भी बुला लो, बल्कि होना यह चाहिए कि मृत्यु के समय कोई भी सामने न हो, तभी परमात्मा की याद आएगी। परिवार पत्नी को सामने रखोगे तो उनके प्रति आकर्षित होकर फिर संसार बढ़ाओगे। द्रौपदी ने सबके सहारे छोड़कर एकमात्र भगवान को याद किया तो मंजिल मिल गई। दुनिया का सहारा क्या लेना, बस एक सहारा काफी है। धर्म प्रभावना आज सेक्टर 7 का स्थानक पूरा भर चुका था। 4 शरण का पाठ संतरत्न अनुत्तर मुनि महाराज सा ने कराया, आचार्य प्रवर का सानिध्य मिला, सभी में भारी उत्साह रहा। आज भाई महेंद्र जी ने कहा, हम रोहिणी क्षेत्रवासी बहुत सौभाग्यशाली और पुण्यशाली हैं कि हमें ऐसे महान गुरुदेव का सानिध्य मिला। आप श्री ने 4 शरण की महत्ता को गहराई से समझाया है। हम रोहिणी क्षेत्रवासियों को बहुत कम लाभ मिला है। आप पुनः पधारकर अधिक से अधिक समय विराजे। त्रिंगा के प्रधान श्री महावीर जी जैन, दीनदयाल जी आदि का शिष्टमंडल आकर त्रिंगा पधारने की विनंती रखी। प्रवचन के बाद आचार्य प्रवर विहार कर सेक्टर 11 के स्थानक में पधारे। बहुत से भाई बहन साथ चले। आचार्य प्रवर ने एक प्रार्थना के बाद फरमाया कि घर में एक भी सदस्य पुण्यवान हो तो सारा घर चलता है। पुराने जमाने में 5-7 संतानें होती थी, उसमें एक तो पुण्यवान मिल ही जाती जिससे सारे घर का काम चलता था। अब तो 1 या 2 संतान का भी पालन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि पुण्यवानी की कमी है। ऐसे समय में पुण्यवाणी कमाने के लिए धर्म स्थानक में आकर संतों के दर्शन एवं धर्माचरण करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार गाड़ी को चलाने के लिए जैसे पेट्रोल भरने पेट्रोल पंप पर जाते हैं, वैसे ही धर्म स्थानक में आकर धर्म लाभ लीजिए। सेक्टर 11 में विराजमान संतरत्न श्री महात्मा जी महाराज साहब संतरत्न श्री सुदर्शन मुनि जी महाराज साहब ने आचार्य प्रवर के पदार्पण की अगुवानी की। शनिवार का प्रवचन सेक्टर 11 में प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक होना संभावित है। श्री अरिहंत मार्गी जैन महासंघ सदा जयवंत हों।